आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज के संक्षिप्त समाचार वृषाली जैन के साथ। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिंस ने लोगों से अपील की है कि वे मौसम या बोंडाई हमले के बाद बनी असहजता को अपने परिवार के साथ नए साल की योजनाओं पर हावी ना होने दें। उन्होंने कहा कि समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रीमियर मिंस ने कहा कि मैं एक स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि न्यू साउथ वेल्स पुलिस बड़ी संख्या में तैनात रहेगी। कुछ मामलों में पुलिस के पास ऐसे हथियार भी होंगे जो लोगों ने पहले नहीं देखे होंगे, लेकिन हमारा मानना है कि जनता की सुरक्षा के लिए ये बिल्कुल जरूरी है। हमारा उद्देश्य लोगों का भरोसा बहाल करना है ताकि सिडनी वासी दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर का आनंद निडर होकर ले सके। हम इन लोगों को जीतने नहीं दे सकते। वहीं वेवली के मेयर विल नेमिश ने बताया कि बोंडाई बीच पर न्यू ईयर्स ईव के जश्न को रद्द कर दिया गया है, लेकिन अन्य कार्यक्रम जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि नए साल में स्थानीय परिषद 26 जनवरी को होने वाले आयोजनों की योजनाओं पर चर्चा करेगी। मेयर नेमिश ने कहा कि हाल के दिनों में स्थानीय कारोबारों में गतिविधि कम हुई है और उन्होंने लोगों से फिर से इन व्यवसायों का समर्थन करने की अपील की है। वहीं सिडनी हार्बर फोरशोर पर होने वाले न्यू ईयर ईव कार्यक्रम के दौरान बोंडाई हमले में जान गंवाने वाले 15 लोगों की याद में एक मिनट का मौन रखा जाएगा। न्यू ईयर ईव की रात 9 बजे हार्बर ब्रिज को सफेद रोशनी से रोशन किया जाएगा, जिस पर पीस शब्द और एक कबूतर की आकृति प्रदर्शित की जाएगी। न्यू साउथ वेल्स के बहुसांस्कृतिक मामलों के मंत्री स्टीफन कैंपर ने कहा कि नए साल का स्वागत करने का ये एक महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण तरीका होगा। इस रिपोर्ट में ऐसे संदर्भ शामिल हैं जो कुछ श्रोताओं के लिए पीड़ादायक हो सकते हैं। सिडनी के उत्तर पश्चिमी इलाके में हुई चाकूबाजी की घटना में 2 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने एक 47 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार क्विकर्स हिल में एक आवास पर तड़के सुबह करीब 5 बजे किसी गड़बड़ी की सूचना मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां चाकू से घायल एक पुरुष और एक महिला की मृत्यु हो गई। इसके बाद 47 वर्षीय एक व्यक्ति ब्लैकटाउन पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सुपरिंटेंडेंट जेसन जॉयस का कहना है कि माना जा रहा है कि जिन 2 लोगों की मृत्यु हुई वे आपसी रिश्ते में थे। यदि आप या आपका कोई परिचित पारिवारिक हिंसा से प्रभावित है तो ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय फैमिली वायलेंस काउंसलिंग हेल्पलाइन 1800 रिस्पेक्ट यानी 1800-737-732 पर संपर्क किया जा सकता है। आपात स्थिति में 000 पर कॉल करें। दूसरी ओर नेशनल्स पार्टी के नेता डेविड लिटिल प्राउड का कहना है कि एल्बनीजी सरकार को बिजली की कीमतें कम करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने ये टिप्पणी एक नई रिपोर्ट के बाद की, जिसमें पाया गया है कि अगले साल घरों के आवास, बिजली, बीमा और खाद्य पदार्थों पर कुल मिलाकर लगभग $2,000 का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। SEC न्यूगेट मूड ऑफ द नेशन रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि महंगाई और जीवन यापन की लागत को काबू में रखने की क्षमता पर लेबर और कोएलिशन दोनों से भरोसा खो चुके मतदाताओं का आंकड़ा अप्रैल में 19% से बढ़कर अब 30% हो गया है। डेविड लिटिल प्राउड का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बिजली की बढ़ती कीमतों पर ठोस कार्यवाही चाहते हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ऑस्ट्रेलिया ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते का स्वागत किया है। ये संघर्ष विराम शनिवार 27 दिसंबर को स्थानीय समयानुसार दोपहर 12 बजे से लागू हुआ, जिससे लगभग 3 हफ्तों से जारी घातक झड़पों का अंत हो गया। इस तनाव के चलते करीब 10 लाख लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए थे। इस समझौते को अंतिम रूप देने में चीन और अमरीका ने मदद की। समझौते में लोगों को सुरक्षित रूप से अपने घरों तक लौटाने को प्राथमिकता दी गई है, साथ ही बारूदी रंगों को हटाने पर भी सहमति बनी है। इसके अलावा यह भी तय किया गया है कि संघर्ष विराम लागू होने के 72 घंटे बाद थाईलैंड जुलाई से हिरासत में रखे गए 18 कंबोडियाई सैनिकों को रिहा करेगा। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग ने एक बयान में कहा है कि आसियान पर्यवेक्षक टीमों ने अपनी महत्वपूर्ण और निरंतर भूमिका के जरिए सराहनीय काम किया है। और अंत में खबरें भारत से। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के बाद असम में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत 10,56,000 से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार ये कार्यवाही घर घर जाकर किए गए सत्यापन के बाद की गई, जो 22 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच पूरा हुआ। नई ड्राफ्ट मतदाता सूची के मुताबिक असम में कुल मतदाताओं की संख्या 2,51,00,000 से अधिक है, हालांकि इसमें 93,000 से ज्यादा डी वोटर शामिल नहीं है। डी वोटर वे लोग हैं जिन्हें नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों की कमी के कारण मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि हटाए गए नामों में करीब 4,50,000 मृत मतदाता, 5,00,000 से ज्यादा स्थानांतरित मतदाता और 53,000 से अधिक डुप्लीकेट प्रविष्टियां शामिल रही हैं। राज्य भर में 61,00,000 से अधिक घरों का सत्यापन किया गया था। आयोग ने बताया कि मतदाता 22 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, जबकि अंतिम मतदाता सूची 10 फरवरी को जारी कर दी जाएगी। असम में 6 महीने से कम भी समय में चुनाव होने वाले हैं। इसी के साथ 28 दिसंबर 2025 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।